अध्याय दो, सृष्टि। ये अध्याय उत्पत्ति एक और दो पर आधारित है। भजन संहिता 38 आयत 6-9 में लिखा है, यहोवा ने आदेश दिया और सृष्टि तुरंत अस्तित्व में आई। परमेश्वर के श्वास ने धरती पर हर वस्तु रची। जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। भजन संहिता 104 आयत 5 में लिखा है, तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वो कभी नहीं डगमगाए। जब सृष्टिकर्ता के हाथों से पृथ्वी की रचना उभर कर आई, वो अत्यंत सुंदर थी। उसकी सतह को पर्वतों, पहाड़ियों और वादियों ने विविधता प्रदान की और उसके बीच यहां वहां वैभवपूर्ण नदियां और सुंदर तालाब थे, लेकिन वे वर्तमान के खतरनाक खड़ी ढाल और डरावनी खाइयों से भरपूर विषम और उबड़ खाबड़ पर्वत और पहाड़ियों की तरह नहीं थे। धरती के पथरीले ढांचे के विषम छोर उपजाऊ मिट्टी के नीचे दबे हुए थे, जो चारों तरफ हरियाली की प्रचुर उपज उत्पन्न करती थी। वहां विभत्स दलदल और बंजर रेगिस्तान नहीं थे। प्रत्येक मोड़ पर सुंदर झाड़ियों और कोमल पुष्प आंखों का स्वागत करते थे। शिखर वर्तमान युग के पेड़ों से अधिक ऊंचे ऊंचे वृक्षों से विभूषित थे। हवा अशुद्ध भाप से अदूषित, साफ और सेहतमंद थी। संपूर्ण परिदृश्य की सुंदरता सबसे महान महल के सुसज्जित मैदानों को मात देती थी। स्वर्गदूतों की टोली इस दृश्य को प्रसन्नचित होकर निहारती थी और परमेश्वर के निराले कृत्यों में आनंदित होती थी। जब जीव जंतु और पेड़ पौधों से परिपूर्ण धरती अस्तित्व में लाई गई, उसके बाद आदम को, जो सृष्टिकर्ता की श्रेष्ठतम रचना था, जिसके लिए सुंदर पृथ्वी को रचा गया था, कार्यवाही के मंच पर उतारा गया। उसको उस सब पर अधिराज्य दिया गया जिसे उसकी आंखें देख सकती थीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए और उन्हें समस्त पृथ्वी का अधिराज्य सौंपे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यह मानव जाति का उद्गम स्पष्ट रूप से बताया है और ईश्वरीय लेख को इतने स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष का कोई अवसर नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। यहां कोई रहस्य नहीं। इस धारणा का कोई आधार नहीं कि मनुष्य का विकास धीमी गति से जीव जंतु और पेड़ पौधों के जगत में से हुआ। ऐसी शिक्षा सृष्टिकर्ता के श्रेष्ठ कार्य को मनुष्य की संकीर्ण दुनियावी धारणा के स्तर पर उतार देती है। मनुष्य परमेश्वर को सृष्टि के प्रभुत्व से वर्जित रखने को इतना अभिलाषी है कि वो मनुष्य को निम्नीकृत करता है और उसके मूल के गौरव से वंचित करता है। उसने तारागण को ऊंचाइयों पर स्थापित किया और सूक्ष्म निपुणता से धरती के फूलों को रंगों से भरा, जिसने अपनी शक्ति के चमत्कार से धरती और आकाश को भर दिया। और जब वो सुंदर धरती के स्वामी के रूप में एक को स्थापित करने और अपने महिमावान कार्य को मुकुट पहनाने के चरण पर पहुंचा, तो वह उस प्राणी की सृष्टि करने में पीछे नहीं हटा जो उसके हाथ के सम्मान योग्य था, जिसने उसे जीवन दिया था। हमारी जाति की वंशावली प्रेरणा अनुसार महान सृष्टिकर्ता से प्रारंभ होती है, ना कि विकासशील कीटाणुओं, घोंघों या चौपाया जानवरों की श्रृंखला से। हालांकि वह मिट्टी से बना था, पर आदम परमेश्वर का पुत्र था। उसे निम्न श्रेणी के प्राणियों के ऊपर परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में रखा गया था। ये परमेश्वर के प्रभुत्व को ना ही समझ सकते थे और ना ही स्वीकार कर सकते थे, लेकिन फिर भी इन्हें मनुष्य की सेवा करने और उससे प्रेम करने योग्य बनाया गया था। भजन लिखने वाला भजन संहिता 8 आयत 6-8 में लिखता है, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। मनुष्य को परमेश्वर की छवि धारण करनी थी, सादृश्य में भी और चरित्र में भी। यीशु पिता के तत्व की छाप है, परंतु मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था। उसके स्वभाव और परमेश्वर की इच्छा में सामंजस्य था। उसका मानस स्वर्गीय विषयों को समझने के योग्य था। उसका मनोवेग पवित्र था। उसकी प्रवृत्ति और अभिलाषाएं विवेक के नियंत्रण में थे। वह परमेश्वर की छवि धारण करने में और उसकी इच्छा की पूर्ण आज्ञाकारिता में खुश था। परमेश्वर द्वारा सृजन होने पर मनुष्य उत्कृष्ट डील, डॉल और उत्तम समरूपता का स्वामी था। उसकी मुखाकृति में सेहत का सुर्ख रंग था और वो सजीवता और आनंद के प्रकाश से कांतिमान थी। आदम का कद आज के मनुष्यों से बहुत अधिक ऊंचा था। हवा उससे डील डॉल में कुछ कम थी, लेकिन उसका रूप वैभवपूर्ण और सुंदरता से भरपूर था। ये पापरहित दंपति कोई कृत्रिम वस्त्र नहीं पहने हुए थे। उन्हें स्वर्गदूतों समान प्रकाश और महिमा से आवृत किया गया था। जब तक वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहे, ये प्रकाश का आवरण उन्हें ढांके रखा। आदम की सृष्टि के पश्चात सभी जीवित प्राणियों को नामकरण के लिए उसके समक्ष लाया गया। परमेश्वर ने देखा कि सबको एक साथ ही दिया गया था, लेकिन उनमें आदम का सहायक होने योग्य कोई नहीं था। परमेश्वर द्वारा धरती पर समस्त जीवधारियों में एक भी मनुष्य के तुल्य न था, और परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना उचित नहीं, मैं उसके लिए सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाएं। मनुष्य को एकांत में वास करने के लिए नहीं बनाया गया था, उसे एक सामाजिक प्राणी होना था। संगति के अभाव में अदन की वाटिका के मनोहर दृश्य और आनंदमय नियोजन संपूर्ण प्रसन्नता नहीं दे पाते। स्वर्गदूतों के साथ संगति भी उसकी मैत्री और दया की अभिलाषा को संतुष्ट नहीं कर पाती। कोई भी इस स्वभाव का नहीं था कि प्रेम कर सके और प्रेम पा सके। परमेश्वर ने स्वयं आदम को साथी प्रदान किया। उसने आदम के लिए सहायक प्रदान किया जो उससे मेल खाता था, जो उसका साथी बनने योग्य था और जो प्रेम और दया में एक हो सकता था। हवा की सृष्टि आदम के शरीर से एक पसली निकालकर की गई। इसका ये तात्पर्य था कि ना ही वो आदम पर सिर की तरह नियंत्रण रखे और ना ही आदम के पैरों तले रौंदी जाए, लेकिन पार्श्व में बराबरी के स्तर पर रहे और उसके प्रेम और संरक्षण में रहे। आदम का हिस्सा उसकी हड्डी और मांस का मांस, वो उसी का दूसरा भाग था, और इससे इस तथ्य को दिखाया गया कि इस संबंध में घनिष्ठ सामंजस्य और स्नेहशील लगाव होना जरूरी है। इफिसियों 5:29 में लिखा है, कोई अपनी देह से तो कभी घृणा नहीं करता, बल्कि वो उसे पालता पोसता है और उसका ध्यान रखता है। इसलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। परमेश्वर ने प्रथम विवाह का उत्सव मनाया, इसलिए इस व्यवस्था का उत्पन्नकर्ता सृष्टि का सृष्टिकर्ता है। इब्रानियों 13:4 में लिखा है, विवाह सम्मानीय है, ये मनुष्य को परमेश्वर द्वारा दिए गए पहले उपहारों में से एक है, और ये उन दो व्यवस्थाओं में से एक है जो आदम पतन के पश्चात अपने साथ अदन की वाटिका के द्वार के बाहर लाया था। जब इस संबंध में ईश्वरीय सिद्धांतों को मान्यता दी जाती है और उनका अनुसरण किया जाता है, तो विवाह एक वरदान साबित होता है। वो कुल की पवित्रता और खुशहाली की रक्षा करता है, मनुष्य की सामाजिक जरूरतों का पूरक होता है और उसके भौतिक, बौद्धिक और नैतिक आचरण को उन्नत करता है। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाया था सुंदरता की पराकाष्ठा थी, और कोई ऐसी कमी नहीं थी जिसकी आपूर्ति इस पवित्र दंपति की प्रसन्नता में योगदान दे सकती थी। फिर भी परमेश्वर ने इन्हें अपने प्रेम का एक और प्रतीक दिया। उसने उनके लिए एक और वाटिका तैयार की जिसे वो घर कह सके। इस वाटिका में हर तरह के पेड़ थे और उनमें से कई सुगंधित स्वादिष्ट फलों से लदे थे। यहां मनोहर दाखलताएं थीं जो सीधी तो खड़ी थीं पर फिर भी देखने में मनभावनी थीं, और उनकी शाखाएं विभिन्न गहरे रंगों के आकर्षक फलों के भार से झुकी हुई थीं। आदम का काम था कि वो दाखलताओं से निकुंज तैयार करे और इस तरह फलों और वनस्पति से लदे जीवित पेड़ों से अपना घर बनाए। वहां प्रचुर मात्रा में प्रत्येक रंग के सुगंधित फूल थे। वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष था जिसकी अप्रतिम सुंदरता अन्य पेड़ों से ज्यादा थी। सुंदर सृष्टि में कोई पाप का दाग नहीं था और ना ही मृत्यु की छाया थी जो उसे क्षति पहुंचाए। भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। अय्यूब 38:7।
महान यहोवा ने धरती की नींवों को रखा था
उसने पूरे जगत को सुंदरता के आवरण से सजाया था और मनुष्य के उपयोगी वस्तुओं से परिपूर्ण किया था। उसने जल और थल के सभी अजूबों का सृजन किया था। 6 दिनों में सृष्टि का महान कार्य संपन्न हुआ था और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। परमेश्वर को अपने हाथों की रचना को देखकर संतोष हुआ। सब कुछ उत्तम था, पवित्र रचयिता के सम्मान योग्य, और उसने अपनी प्रतिभा के प्रत्यक्षीकरण और अपनी बुद्धिमता और अच्छाई के परिणाम से प्रसन्न होकर विश्राम किया। 7वें दिन विश्राम करने के पश्चात परमेश्वर ने उसे पवित्र ठहराया और मनुष्य के लिए विश्राम दिन के तौर पर अलग किया। सृष्टिकर्ता के उदाहरण का अनुसरण करके मनुष्य को इस पवित्र दिन विश्राम करना था, ताकि स्वर्ग और धरती को देखकर वो परमेश्वर की सृष्टि के महान कार्य का चिंतन कर सके और परमेश्वर की बुद्धिमता और अच्छाई के साक्ष्य को देखकर उसका हृदय सृष्टिकर्ता के प्रति प्रेम और भक्ति से भर सके। अदन में 7वें दिन को आशीषित करते हुए उसने सृष्टि के अपने कार्य का स्मारक बनाया। सबत को आदम के सुपुर्द किया गया और आदम संपूर्ण मानव परिवार का पिता और प्रतिनिधि था। पृथ्वी के वासियों द्वारा सबत का पालन उनकी आभारपूर्ण स्वीकृति का प्रदर्शन था कि परमेश्वर उनका सृष्टिकर्ता और यथोचित अधिपति था, और यह कि वे उसके हाथों की रचना और उसके राज्य की प्रजा थे। इस तरह ये पूरी व्यवस्था स्मरणीय थी और समस्त मानव जाति के लिए दी गई थी। इसमें किसी के लिए कुछ भी धुंधला या वर्जित प्रयोग का नहीं था। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के लिए परलोक में भी सबत जरूरी था। उसके लिए 7 दिनों में से 1 दिन के लिए अपनी रुचि और अपने उद्यम को अलग रखना होगा, ताकि वो परमेश्वर के कामों पर पूरी तरह विचार कर सके और उसकी शक्ति और अच्छाई पर मनन कर सके। उसे परमेश्वर को स्पष्ट रूप से याद दिलाने के लिए और उसमें आभार का भाव उत्पन्न करने के लिए सबत की जरूरत थी, क्योंकि वो सब जो उसके पास था और जिसका वो आनंद उठाता था सृष्टिकर्ता के उदार हाथों से आया था। ये परमेश्वर की योजना है कि सबत मनुष्य का मन उसकी रचनाओं के अवलोकन की तरफ मोड़े। प्रकृति मनुष्य की इंद्रियों से बात करती है और ये घोषणा करती है कि एक जीवित परमेश्वर सृष्टिकर्ता और उच्चतम अधिपति है। भजन संहिता 19 आयत 1-2 में लिखा है, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाशमंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन में दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। सुंदरता जो धरती को आवृत करती है परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है। हम इसे अमर पर्वतों में, ऊंचे ऊंचे वृक्षों में, खिलती हुई कलियों में और कोमल फूलों में देख सकते हैं। ये सब हमें परमेश्वर के बारे में बताते हैं। हमेशा इनके बनाने वाले की तरफ संकेत करते हुए सबत मनुष्य को प्रकृति की महान पुस्तक खोलने की आज्ञा देता है और उसमें सृष्टिकर्ता के प्रेम, विवेक और सामर्थ्य को ढूंढने को कहता है।
हमारे प्रथम अभिभावक रचना के समय पवित्र और निर्दोष थे, लेकिन वो दुराचार की संभावना से सुरक्षित नहीं थे। परमेश्वर ने उन्हें स्वतंत्र नैतिक कर्मक बनाया था, जो परमेश्वर की अपेक्षाओं की न्यायबद्धता, उसके चरित्र की उदारता और विवेक की सराहना करने में समर्थ हो, और उन्हें आज्ञा मानने या न मानने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। परमेश्वर और पवित्र स्वर्गदूतों के साथ आनंद मनाना उनके भाग्य में था, लेकिन अनंत काल तक सुरक्षित होने से पूर्व उनकी निष्ठा का परीक्षण होना था। मनुष्य के अस्तित्व के आरंभ से ही आत्मभोगी होने की अभिलाषा पर रोक लगाई गई थी। शैतान के पतन का कारण भी यही घातक भावावेश था। ज्ञान का वृक्ष, जो वाटिका के बीच जीवन के वृक्ष के पास खड़ा था, आज्ञाकारिता, विश्वास और हमारे अभिभावकों के प्रेम का परीक्षण था। उन्हें इस पेड़ को छोड़कर अन्य सभी पेड़ों के फल खाने की छट थी। शैतान के प्रलोभनों से भी उनका सामना कराना था, और यदि वे परीक्षा में खरे खतरे तो उन्हें शैतान की शक्ति से ऊपर कर दिया जाता और वे परमेश्वर की अनंत कृपा दृष्टि का आनंद उठाते। व्यवस्था के अधीन होना,
मनुष्य के अस्तित्व का अपरिहार्य प्रतिबंध था जो परमेश्वर ने लगाया था। वो ईश्वरीय सत्ता की प्रजा था और व्यवस्था के अभाव में कोई सत्ता नहीं होती। परमेश्वर मनुष्य को व्यवस्था का उल्लंघन करने की योग्यता से वंचित रख सकता था। वो आदम के हाथ को निषिद्ध फल को छूने से रोक सकता था, लेकिन ऐसा करने से मनुष्य एक स्वतंत्र नैतिक कर्मक न होकर स्वचालित मशीन के समान होता। चयन की स्वतंत्रता के अभाव में उसकी आज्ञाकारिता स्वैच्छिक न होकर कृत्रिम होती। इन परिस्थितियों में चरित्र का विकास असंभव था। यह तरीका अन्य ग्रहों के निवासियों के साथ व्यवहार करने की परमेश्वर की योजना के विपरीत होता। ये बुद्धिजीवी मानव के लिए अनुचित होता और शैतान द्वारा लगाए गए आरोप को प्रमाणित कर देता कि परमेश्वर का शासन एक पक्षीय है। परमेश्वर ने मनुष्य को सिद्ध बनाया था। उसने मनुष्य को चरित्र की कुलीन विशेषताएं दी थीं, जिनका बुराई की तरफ झुकाव नहीं था। उसने उसे बौद्धिक योग्यता से युक्त किया था और उसके समक्ष प्रभावशाली संभव प्रोत्साहन रखे थे, जिससे वो अपनी निष्ठा में खरा उतरे। परिपूर्ण और अनंत आज्ञाकारिता अनादि आनंद का प्रतिबंध थी। इसी शर्त पर वो जीवन के वृक्ष तक पहुंच सकता था। जैसे जैसे उनके बच्चे धरती पर आकर निवास करते, हमारे प्रथम अभिभावकों का घर दूसरे परिवारों के लिए आदर्श होना था। वो घर परमेश्वर के हाथों से सुसज्जित किया हुआ अति सुंदर महल नहीं था। मनुष्य अपने घमंड में बहुमूल्य व भव्य विशाल भवनों से प्रसन्न होते हैं और स्वयं की हस्तकृतियों पर गर्व करते हैं, लेकिन आदम को परमेश्वर ने वाटिका में रखा। वही उसका घर था। नीला आकाश उसका गुबंध था और धरती अपने कोमल फूलों और हरी घास के कालीन सहित उसकी सतह थी। सुंदर वृक्षों की पत्तेदार शाखाएं उसका मंडप। उसकी दीवारें अत्याधिक सुंदर सजावट से सजी हुई थीं। वो महान दक्ष कलाकार की हस्तकला से सुसज्जित थीं। पवित्र दंपति के परिवेश में ये सबक सीखने को था कि वास्तविक प्रसन्नता गर्व और भोग विलास से नहीं, वरन परमेश्वर के साथ उसकी सृष्टि के माध्यम से संपर्क बनाए रखने से होती है। अगर मानव कृत्रिम पर कम ध्यान दे और अधिक सहजता को बढ़ाए, तो वो अपनी सृष्टि में परमेश्वर की योजना को जान पाएगा। घमंड और महत्वाकांक्षा कभी संतुष्ट नहीं होते, लेकिन जो वास्तव में बुद्धिमान है, वे उन उपभोग के स्रोतों में पर्याप्त और मन को हल्का करने वाले सुख को प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर ने सबकी पहुंच में रखे हैं।
अदनवासियों को वाटिका की देखभाल का कार्य सौंपा गया था। उनका व्यवसाय ठकाने वाला नहीं बल्कि सुखद और शक्तिवर्धक था। परमेश्वर ने श्रम को मनुष्य के लिए आशीष के रूप में बनाया था, जिससे वह मन को बहला सके, शरीर को स्वस्थ कर सके और अपनी योग्यता का विकास कर सके। मानसिक और शारीरिक क्रियाकलाप में आदम ने अपने पवित्र अस्तित्व के उच्चतम आनंद को प्राप्त किया, और जब अवज्ञा के परिणाम स्वरूप उसे अपने सुंदर निवास स्थान से निकाला गया और बाध्य किया कि वह कठोर धरती पर प्रतिदिन के भोजन के लिए संघर्ष करें, तो वही श्रम, जो वाटिका के सुखद व्यवसाय से बहुत भिन्न था, प्रलोभन के प्रति बचाव और प्रसन्नता का स्रोत बना। जो काम को शाप समझते हैं क्योंकि वह थकाने वाला और दुखदायी होता है, वे गलती करते हैं। धनवान श्रमिकों को तुच्छ समझते हैं, लेकिन यह मनुष्य की सृष्टि में परमेश्वर की योजना से पूर्णतया भिन्न है। तेजस्वी आदम की दी गई धरोहर की तुलना में सबसे धनवान व्यक्ति की संपत्ति कुछ भी नहीं है, फिर भी आदम को आलस्य से दूर रहना था। सृष्टिकर्ता ने आदम को कार्य करने को दिया क्योंकि वह समझता है कि मनुष्य की प्रसन्नता किस में है। उद्यम करने वाले नर और नारियों को ही जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। स्वर्गदूत भी परिश्रमी कर्मकर है। वे मनुष्य के बच्चों के लिए परमेश्वर के प्रतिनिधि है। सृष्टिकर्ता ने आलस्य की विकासहीन प्रथा के लिए कोई स्थान नहीं बनाया। परमेश्वर के प्रति सच्चे होते हुए आदम और हवा को धरती पर राज्य करना था। उन्हें हर जीवधारी पर असीमित नियंत्रण दिया गया था। सिंह और भेड़ शांति से उनके आसपास खेलते थे या उनके चरणों में बैठ जाते थे। प्रसन्न पक्षी निडरता से उनके पास उड़ते रहते और जब पक्षी अपनी चहचहाट से सृष्टिकर्ता का गुणगान करते तो आदम और हवा भी उनके साथ पिता और पुत्र को धन्यवाद करते। वह पवित्र दंपति केवल बच्चों समान नहीं थे जो परमेश्वर पिता की देखरेख में थे, बल्कि वे शिष्य भी थे जो सर्वज्ञानी सृष्टिकर्ता से निर्देश प्राप्त कर रहे थे। स्वर्गदूत उनसे भेंट करने आने थे और उन्हें सृष्टिकर्ता से संपर्क करने की अनुमति प्राप्त थी। वे जीवन के वृक्ष में प्रदान की गई शक्ति से भरपूर थे और उनकी बौद्धिक योग्यता स्वर्गदूतों से कुछ ही कम थी। प्रत्यक्ष सृष्टि के रहस्य सर्वज्ञानी की अद्भुत कृतियों। अय्यूब 37 आयत 46 में मनुष्य को निर्देश और प्रसन्नता का कभी ना खत्म होने वाला स्रोत मिला। प्रकृति के नियम और कार्यविधियां, जिसने 6000 वर्षों से मनुष्य को अध्ययनरत रखा है, मनुष्य को अनंत परमेश्वर द्वारा स्पष्टता से दिखाई गई। वे पेड़ पौधों और पत्तों से बात करते थे और हरेक से उसके जीवन के रहस्य की जानकारी लेते थे। विशालकाय समुद्री जंतु लिवियायन से लेकर सूर्य की किरण में उड़ते कण समान कीड़ों से आदम परिचित था। उसी ने हरेक को नाम दिया था और वह उनके स्वभाव और आदतों को जानता था। स्वर्ग में परमेश्वर का वैभव, यथाक्रम परिक्रमण करते असंख्य ग्रह, बादलों का संतुलन, प्रकाश और ध्वनि के रहस्य, दिन और रात के रहस्य, ये सब हमारे पूर्वजों के लिए अध्ययन के विषय थे। जंगल के हर पत्ते पर, पर्वतों के हर पत्थर पर, हर चमकते तारे में, धरती, हवा और आकाश में परमेश्वर का नाम लिखा था। सृष्टि का क्रम और सामंजस्य अनंत बुद्धिमता और सामर्थ्य को दर्शाते थे। वह हर पल कोई आकर्षण खोज निकालते थे जिससे उनके हृदय और भी गहरे प्रेम से भर जाते और वे आभार की अभिव्यक्ति करते। जब तक वे ईश्वरीय व्यवस्था के प्रति निष्ठावान रहते, उनमें जानने की, आनंदित होने की और प्रेम करने की क्षमता बढ़ती रहती। वे ज्ञान के नए भंडार निरंतर पाते रहते, प्रसन्नता के नए सोते पता लगाते रहते और परमेश्वर के अपरिवर्तनीय और अथाह प्रेम की और स्पष्ट अवधारणा प्राप्त करते।